प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 11 मई 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं नवीन कुमार, आप मोतिहारी बिहार से हैं, आदित्य पासवान, आप समस्तीपुर बिहार से हैं, और सुमित कुमार, आप लुधियाना पंजाब से हैं। तो नवीन, आदित्य और सुमित, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप लोगों का स्वागत करते हुए आज मुझे इस बात को बताने में बेहद खुशी, बेहद आत्मसंतोष और सच पूछे तो कहीं न कहीं गर्व की भी अनुभूति हो रही है कि हमारी एकेडमी के सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं दिलमिल सिंह सोच, जो पंजाब से हैं। कल सिविल सर्विस के जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं उसमें उनको 379th रैंक प्राप्त हुई है और यह सफलता उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में हासिल की है। तो दिलमिल सिंह, जितने भी हमारे प्रिय श्रोता हैं, जितने भी एकेडमी के चारों बैच के स्टूडेंट हैं और विशेषकर सेकेंड बैच के स्टूडेंट जिनके साथ आप लोगों आपने 15 दिन की क्लासेस अटेंड की हैं, एफी की पूरी टीम, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल और अपनी तरफ से मैं आपको, आपके पापा को और आपकी मम्मी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यह जो सफलता है यहीं तक न रुके बल्कि अगले अटेम्प्ट में आपकी रैंकिंग और हाई होकर वहां तक पहुंचे जहां तक आप वाकई में पहुंचना चाह रहे हैं। मित्रों, दिलमिल सिंह की जो सफलता है वाकई में एक, मैं समझता हूं कि प्रेरणादायी सफलता है। और जैसे ही मुझे उनकी सफलता की खबर मिली, मुझे दूसरे मेरे स्टूडेंट्स ने भी इसके बारे में जानकारी दी थी, यहां तक कि उनके बैचमेट राहुल राय जो अभी एमआईटी अमेरिका में है उनके मेल से भी मुझे इस बात की सूचना मिली और फिर बाद में दिलमिल सिंह का खुद मेल आया और फिर मैंने उनसे फोन पर बात की, उनके पापा मम्मी से भी मैंने बात की। उनकी सफलता इस मायने में बहुत ही प्रेरणास्पद है कि उन्हें तैयारी करने का बहुत कम वक्त मिला था, सामान्य परिवार से हैं और उनके माता पिता से भी बातचीत करने पर मुझे लगा कि वो सब के सब बहुत ही एक जो पारिवारिक किस्म के जो लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं, उस तरह के सब लोग हैं। यानी कि वो हम सब के जो आम भारतीय परिवार होते हैं उनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बात मैं खासकर इसलिए कह रहा हूं कि खासकर जब स्टूडेंट्स आईएएस के रिजल्ट्स के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी इमेजेस इमर्ज होती हैं जैसे कि वो जो लड़का होगा बहुत बड़े परिवार से होगा और पता नहीं किस तरीके का होगा, बहुत ही ब्रिलियंट होगा, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन दिलमिल सिंह सोच को, उनके पूरे के पूरे परिवार को आप खुद से और अपने परिवार से बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मित्रों, दिलमिल सिंह सोच के बारे में जब अभी सोचने की कोशिश कर रहा हूं तो सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं, मुझे मेरे दिमाग में उनकी तस्वीर बिल्कुल उभर रही है क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से भी आकर के मिलते थे और एक बहुत अच्छी बात यह रही कि वो लगातार मेल से भी वो जुड़े हुए थे, एकेडमी से लगातार जुड़े हुए थे, लगातार उनके मेल आते रहते थे। और आपको ध्यान होगा कि इंटरव्यू देने से पहले ही उन्होंने मेल लिखा था और आप सबकी शुभकामनाएं आशीर्वाद उन्होंने चाहा था और हम लोगों ने इस अपने इस डेली ऑडियो के माध्यम से उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित भी की थी और उसके बाद आज हम उन्हें अपनी बधाई प्रेषित कर रहे हैं। मित्रों, आप लोगों के बिहाफ पर मैंने दिलमिल सिंह से ये कहा है, रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी तैयारी के पूरे पैटर्न को बड़ी ईमानदारी के साथ, उसकी कमजोरियों को, उसकी बाधाओं को, सब चीजों को लेकर के अपनी प्रिपरेशन पर एक लंबा लेख लिखें। और वो उन्होंने एग्री किया है आप सबके लिए ये लेख लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त इस बात को लेकर मांगा है कि 10-15 दिन में मार्कशीट आ जाएंगी और इन्हें उन्होंने बहुत सही बात कही। मार्कशीट आ जाने के बाद वो अपने मार्क्स का इवेलुएट करते हुए, इवेलुएशन करते हुए फिर एक लेख आप लोगों के लिए तैयार करेंगे। जैसे ही वो लेख उनका आ जाएगा, मैं डेली ऑडियो के माध्यम से भी वो लेख आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और फिर वो afeis.com पर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। आप लोगों को दोस्तों इस बीच में बहुत से स्टूडेंट्स की बातें पढ़ने को मिलेंगी, उनकी तैयारी के पैटर्न पर उनके इंटरव्यू जानने को मिलेंगे। दिलमिल सिंह से मैंने स्पेशली ये रिक्वेस्ट की है, जो शब्द मैं बार बार एकेडमी के लिए भी यूज करता हूं, वो है ईमानदारी। मैंने कहा है कि हमें अपनी हीरोइक इमेज प्रेजेंट नहीं करनी है कि हमने ये किया वो किया तब जाकर के सफलता मिली, जो वाकई में किया वो सब चीजें वो रखेंगे। और मैं जानता हूं दिलमिल सिंह को कि वो उन बातों को बहुत ही ईमानदारी के साथ आपके सामने रखेंगे। तो दिलमिल, एक बार फिर से पूरे के पूरे एकेडमी के जितने भी प्रिय श्रोता हैं उन सब की ओर से, हम लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही आपके मामा पापा और मम्मी को सच पूछे तो स्टूडेंट्स की तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि उनको एक बार उनकी तरफ से बहुत ही श्रद्धानत होकर के प्रणाम, और हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर से प्रार्थना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप इससे भी अच्छी सफलता हासिल करें। दोस्तों, दिलमिल ने जो मेल भेजा है मेरे पास अपनी इस सफलता के बारे में, मैं चाहूंगा कि मैं उसे आप लोगों के सामने रखूं, पूरी तरह से एक एक शब्द उनका पढ़कर सुनाऊं। नो डाउट ये मैं खासकर इसलिए रख रहा हूं ताकि आप सब सफलता के पीछे जो एक इमोशनल एनर्जी काम करती रहती है, जो फेथ काम करता है, जो बिलीफ काम करता है, उसको भी आप थोड़ा सा समझ सकें, पकड़ सकें। मैं उनके शब्दों को पढ़ रहा हूं, उसमें उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं बीच बीच में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। गुरु जी नमस्कार, आपको और गुरु मां को चरण वंदना एवं सत श्री अकाल जी। गुरु जी, विथ योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आई हैव गॉट AIR 379 इन CSE 2015। गुरु जी, दिस इज ऑल योर्स एंड ओनली योर्स सक्सेस। हिंदी में है कि गुरु जी, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैंने सिविल सर्विस 2015 की परीक्षा में ऑल इंडिया की 379th रैंक प्राप्त की है। गुरु जी, ये केवल और केवल आपकी सफलता ही है। आई वुड ऑल्सो थैंक द असम एफी फैमिली फॉर देयर ग्रेट सपोर्ट एंड हेल्प थ्रू आउट द जर्नी। साथ ही मैं एएफई परिवार के सभी लोगों द्वारा प्राप्त जो एक आश्चर्यजनक मुझे लगातार समर्थन मिलता रहा, उनसे जो सहायता मिलती रही अपनी पूरी इस यात्रा के दौरान, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। माय ग्रेटिट्यूड इज बियॉन्ड व्हाट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। सच पूछे तो मेरा जो आभार है वो शब्दों से परे है, यानी कि आभार को शब्दों से व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। वंस अगेन ए बिग थैंक टू यू, टू गुरुजी, दिस इज ऑल योर्स एज दिस इज ओनली माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई रिलाइड कंप्लीटली ऑन एफई ओनली। गुरुजी, एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं पूरी ही तरह से कंप्लीटली एएफई पर और केवल आप पर ही निर्भर कर रहा था। एवरीथिंग आई एम टूडे इज बिकॉज ऑफ यू। आज मैं जो कुछ भी हूं वो केवल आपके कारण हूं। आई होप आई कैन मेक यू प्राउड इवन मोर द नेक्स्ट टाइम। मुझे विश्वास है कि अगली बार मैं आपको इससे भी बेहतर गर्व की अनुभूति करने का अवसर दूंगा। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू पर्सनली एंड थैंक यू। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। एज आई डोंट हैव योर नंबर सो काइंडली इफ योर टाइम परमिट्स देन इट वुड बी माई ऑनर टू टॉक टू यू। मेरे पास आपका नंबर नहीं है, इसलिए कृपा कर अगर आपके पास आप समय हो तो मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं आपसे बात करके खुद को एक सम्मानित अनुभव कर सकूं। My gratitude is beyond the expression in words. मैं अपने आभार को शब्दों के जरिए व्यक्त नहीं कर सकता। Thank you। और बाद में उन्होंने जो word use किया है, your son दिलमिल सिंह सोच, आपका पुत्र दिलमिल सिंह सोच। No doubt दिलमिल जो माता पिता होते हैं कई तरह के होते हैं, तो जैविक माता पिता होते हैं जो आपके जैविक माता पिता हैं, और उनसे मेरी बात भी हुई, उनसे बात करके मुझे बेहद अच्छा लगा क्योंकि उनकी बात में जो मुलामियत थी, उनकी बात में जो एक तरह से कह लीजिए कि जो आभार का जो एहसास था, जिसको हम कहते हैं नमी थी, जो गीलापन था, वो बहुत ही दिल को खुश करने वाला था। तो जैविक पिता हैं, इसके बाद मानस पिता होते हैं जो आपके मानस को बनाते हैं, इसके बाद हमारे जैविक पूरे जिंदगी को आगे ले जाने वाले पिता होते हैं। पिता का मतलब ही है जो हमारे जीवन को बनाता है। इस रूप में मैं तुम्हारे इस संबोधन को स्वीकार करता हूं, सहृदय स्वीकार करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। और एक बार फिर से मैं मैडम और अपनी ओर से और जिसमें आपके माता पिता भी शामिल हैं आशीर्वाद देता हूं। मित्रों, आज मुझे लगता है कि इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में मुझे बधाइयां काफी लोगों को देने का मौका मिल रहा है और ये लाइफ मैनेजमेंट का मेरे लिए सबसे बड़ा हिस्सा है। अब मैं बधाई देना चाहूंगा राहुल राय को और ये बहुत अद्भुत संयोग है कि राहुल राय भी हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं। राहुल राय के बारे में बहुत अच्छे से आप सब जानते होंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट रहे हैं। कई क्षेत्रों में इन्होंने सफलताएं हासिल की हैं और अभी वो MIT अमेरिका में काम कर रहे हैं। बीच में इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था और ईश्वर की कृपा से वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उस समय पूरे के पूरे हमारे AFE परिवार ने उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक उसी तरह से ईश्वर से प्रार्थना की थी जिस तरीके से कभी अमिताभ बच्चन का स्वास्थ्य खराब होने पर पूरे देश ने उनके लिए प्रार्थनाएं की थी और उस प्रार्थना के परिणाम प्राप्त हुए थे। वही राहुल राय हैं, उन्होंने ही मुझे सूचना दी थी। सबसे पहली सूचना उन्हीं से मिली थी कि चूंकि उनके वो बैचमेट हैं दिलमिल सिंह सोच, तो उन्होंने कहा कि सर उनको सफलता प्राप्त हुई है और इस सफलता के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाइयां देता हूं। और इसके बाद फिर उन्होंने जो बात लिखी है उसके लिए राहुल, मैं फिर से अपने पूरे AFE परिवार जिसमें कि हमारे प्रिय श्रोता शामिल हैं, जिसमें हमारे सब चारों बैच के स्टूडेंट शामिल हैं, एकेडमी की पूरी टीम शामिल है, नो डाउट मैडम और मैं भी शामिल हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल राय ने लिखा है कि सर पिछले शनिवार को मेरे एक प्रेजेंटेशन को MIT और NASA के संयुक्त टीम की तरफ से बेस्ट चुना गया है और मुझे एक प्रोजेक्ट पर NASA के साथ काम करने का मौका मिला है। बेस्ट चुना गया है अमेरिका में जाकर के और NASA और MIT के इंस्टीट्यूट के द्वारा बेस्ट चुना जाना छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। राहुल, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आगे राहुल ने लिखा है, मैं अपनी इस सफलता का श्रेय आपको, अपने AFE परिवार व AFE सेकेंड बैच के अपने सभी बैचमेट्स को देना चाहूंगा। यह आपके मार्गदर्शन व मेरे बैचमेट्स के लगातार उत्साहवर्धन के कारण ही संभव हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर, रिगार्ड्स कैप्टन राहुल राय। राहुल, फिर से बहुत बहुत बधाई और बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी। मित्रों, फिर से एक मेल है और ये मेल है रवि कांत का जो हजारीबाग से हैं और ये हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि इन्हें IDBI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर का पद प्राप्त हुआ है, इनको सफलता मिली है और इसमें इन्होंने लिखा है कि इसके होल क्रेडिट गोज टू यूजर डेली ऑडियो पेपर क्लिपिंग्स प्लेड मेजर रोल, स्पेशली डेली ऑडियो हेल्प मी इन द इंटरव्यू ए लॉट, आई वॉज एबल टू मेक माई सेल्फ काम इन द रूम। ये हमारे फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। ठीक इसी तरह से मित्रों, एक और सफलता की सूचना है और वो है राजेश चंद्रा का जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। ये फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इनको छत्तीसगढ़ के जो PSC एग्जाम होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें इन्होंने प्री में क्वालिफाई किया है और उसका श्रेय इन्होंने एकेडमी की 15 दिन की क्लासेस को दिया है। इसके बाद बहुत बहुत राजेश चंद्रा, इसके लिए आपको बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, ईश्वर से प्रार्थना भी। इसके बाद मित्रों, एक फिर से मेल है दुर्गेश यदुवंशी का जिनको UP रेवेन्यू में लेखापाल का पद मिला है। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय डेली ऑडियो को दिया है। दुर्गेश, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बेहतर सफलता के लिए शुभकामनाएं भी। इसके बाद मित्रों, मेरे पास मेल है नीतीश कुमार जो बेगूसराय से हैं, जो हमारे स्टूडेंट रहे, और मनोहर दत्त मिश्रा जो पटना से हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट रहे, क्लास के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि बिजनेस स्टैंडर्ड में इन दोनों ने, वहां बहस चलती है उसमें अपने लेख भेजे थे और इन दोनों के लेख उसमें शामिल किए गए हैं और पुरस्कृत किए गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो मटेरियल क्लिपिंग्स प्रोवाइड की जाती है, जो क्लासेस में जो बातें बताई गई हैं, जो एनालिटिकल पावर इनका डेवलप हुआ है, उसकी वजह से इन दोनों के पत्रों को सराहा गया है और बिजनेस स्टैंडर्ड में शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से नीतीश और मनोहर दत्त, आप दोनों को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। मित्रों, सफलता कोई भी हो, छोटी बड़ी नहीं होती, क्योंकि सफलता सफलता ही होती है। वो केवल इस बात का मापदंड होती है कि आप, हम एक चीज के लिए कोशिश कर रहे थे और हमारी वह कोशिश पूरी हो गई, उसके परिणाम प्राप्त हुए। तो सभी सफल स्टूडेंट्स जिनके मैंने नाम लिया है, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, सिविल सर्विस के रिजल्ट्स आ चुके हैं, पूरे देश से 1078 स्टूडेंट्स ने इसमें क्वालिफाई किया है। तो मैं अब आप सब की ओर से, एकेडमी की ओर से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से, जो भी स्टूडेंट सफल हुए हैं, उन सबको अपनी बधाई देता हूं और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बेहतर भविष्य का मतलब है जो फिर से अटेम्प्ट करेंगे तो उनकी सफलता के लिए, और जो अटेम्प्ट नहीं करेंगे वो अपने पदों पर रह करके न केवल अपने ही भविष्य को बेहतर बनाएं बल्कि देश के भविष्य को भी बेहतर बनाएं इसके लिए भी। दोस्तों, अब वक्त नहीं है, मैं अब कुछ समय तक आप लोगों से जो सिविल सर्विस के रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स को लेकर के कुछ एनालिसिस करूंगा, कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा, और मेरी ये जो एनालिसिस है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि सत्य क्या होता है, ताकि आप समझ सकें। ये विषय पूरी तरह से लाइफ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होगा। अभी आप सुन रहे हैं कि जो स्टूडेंट जिसने टॉप किया है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप किया है, सी इज हार्डली 22 ईयर्स ओल्ड, नो डाउट की बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन उसके पीछे कौन से तत्व काम कर रहे हैं, जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक सही मायने में हम अपने लिए कोई सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो ये सफलता क्या है, सफलता की सच्चाइयां क्या हैं, अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग तरीके से सफलताएं प्राप्त करते हैं, उनके केंद्र में कौन सी बातें होती हैं जो सब में एक जैसी होती हैं, इन सारे इश्यूज पर हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। तो इसीलिए अब कुछ दिनों तक लाइफ मैनेजमेंट को हम इसी से जोड़कर देखेंगे, ताकि आप लोगों के दिमाग में सिविल सर्विस के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट धारणा बन सके। दोस्तों, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। आपने न्यूज सुनी होगी और उस न्यूज के तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेकर के मैं आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा और आपका ध्यान इधर दिलाना चाहूंगा। मित्रों, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर के एक बहस सी चल रही है, जो बहस खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई है। इस पर तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। फिर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी, उन्होंने उनकी डिग्री जारी की, इसके बाद भी वो बहस जारी रही। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने उसको ऑथेंटिकेट किया है कि वो डिग्री बिल्कुल सही है। सिविल सर्विस में क्या हो सकता है? देखिए, सिविल सर्विस में यदि इसको लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री की डिग्री पर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कैसे उसका निराकरण हुआ और क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारा देश कुछ ऐसे मुद्दों पर बहस कर रहा है जो वास्तव में उतने इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं है, बावजूद इसके कि उससे कितने गुने ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हमारे सामने मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि जो इस तरह के व्यक्तिगत मुद्दे उठाए जा रहे हैं, नो डाउट कि इसमें एक ऑथेंटिसिटी की बात होती है, विश्वसनीयता की बात होती है, इंटीग्रिटी की बात होती है, और ये सब चीजें सही होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो जो बात उठाई जा रही है उसमें दम कितना है, एक बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात है, दम इस मायने में भी, एक तो विश्वसनीयता का दम है और दूसरा यह है कि इससे क्या बदलने वाला है, इससे कौन से परिवर्तन हो जाएंगे, देश में कौन सा विकास हो जाएगा, या रचनात्मकता आ जाएगी, या सकारात्मकता आ जाएगी, या किस तरह की चीजें होंगी। मैं ये ओपन छोड़ रहा हूं मित्रों, मेरी इस बात को आप इस रूप में मत लीजिएगा कि मैं इस बहस के खिलाफ हूं या इस बहस के पक्ष में हूं। मैं कई बार कह चुका हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसे इस रूप में ले लेते हैं, मैं जब इन चीजों इश्यूज पर लिखूंगा तो मैं अखबारों में लिखूंगा और वहां मेरे व्यू होंगे जो इससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मैं कोई भी अपना व्यू आप लोगों पर थोपना नहीं चाहता, मैं आप लोगों को ओपन रखना चाहता हूं आप लोगों के दिमाग को, क्योंकि मालूम है अगर मैंने अपना व्यू देकर के आपके दिमाग को बंद कर दिया तो सिविल सर्विस में अब जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं तो बंद दिमाग से आप उनके आंसर दे ही नहीं सकेंगे। उसमें जरा से ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चंस को तो पता लगेगा कि आपके आंसर देने का तरीका बिल्कुल बदल गया है, और उस तरीके को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आपका दिमाग खुला होगा। इसलिए प्लीज, मैं जो भी बातें इस डेली ऑडियो में कहता हूं उसे आप मेरा व्यू बिल्कुल भी न समझें। मैं तो आपको उसके एंगल्स बताता हूं, उसके डायमेंशंस बताता हूं, सिविल सर्विस के लिहाज से वो किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकता है, मैं ये सब बताने की कोशिश करता हूं, राइट। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे देश के सामने बहुत बड़े बड़े मुद्दे हों, ऐसे समय पर इन छोटे छोटे मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस कर पाना कितना उचित है कितना नहीं। ये मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के प्रश्न आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि निबंध का ये पार्ट हो सकता है, निबंध इस तरह के विषयों पर पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों एक बात और भी होती है कि चलिए निबंध में भी नहीं पूछा जाएगा तो हम तैयारी इस तरीके से तो नहीं करते हैं कि जो पूछा जाएगा उसी पर हम तैयारी करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमको प्रैक्टिस करनी है ताकि हम उस लेवल को पा सकें कि कुछ भी पूछा जा रहा है और हम बता रहे हैं। तो बेहतर है कि इस टॉपिक को आप लोग लें और 10-15 मिनट इस पर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, देख पॉइंट्स लिखें, देखें कि आप इसके पक्ष में क्या बातें कर सकते हैं। इस हां ऐसी छोटी बहसें भी महत्वपूर्ण हैं, इस पर कुछ पॉइंट्स लिखिए, नहीं ये महत्वहीन है इस पर कुछ पॉइंट्स लिखिए, और फिर अपना निष्कर्ष निकालिए। तब आपका धीरे धीरे जो दिमाग है वो इस लायक बन सकेगा कि आप सिविल सर्विस के क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे। मित्रों जो दूसरी खबर थी वो थी भारत और मॉरिशस में एक संधि हुई है। ये मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पिछले 2-3 साल के अगर आप जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में देखें जिसमें इकोनॉमिक्स इकोनॉमी पर पूछा जाता है, उसमें आपको हमेशा या ब्लैक मनी के ऊपर मिलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मिलेगा, आर्थिक अपराधों के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। और नो डाउट कि अब ये केवल भारत की ही बहुत बड़ी आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की समस्या होती जा रही है। आप जान रहे हैं कि जब हम ISIS की फंडिंग की बात करते हैं तो इन्हीं सब सोर्सेज से लगता है कि उनके पास फंडिंग हो रही है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो या चाहे हथियारों की तस्करी हो या मादक पदार्थों की तस्करी हो, तो ये भी एक आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो गया है। तो कल भारत और मॉरिशस के बीच में एक संधि हुई है ताकि दोहरे कराधान के सिस्टम को खत्म किया जा सके, और जो खासकर जो कैपिटल गेन होता है उस पर उस कैपिटल गेन पर टैक्स वसूल करने का अधिकार भारत को मिल सके। मित्रों अभी मैं इसकी डिटेल में आपसे बातें नहीं करना चाह रहा हूं, ये मैंने केवल अभी न्यूज में ये बातें सुनी है, ये न्यूज सुनी है, इस पर मैं डिटेल्स में अब स्टडी करूंगा, और स्टडी करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों मैं इस टॉपिक पर आपसे विस्तार से बात करूंगा ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। लेकिन चूंकि मामला थोड़ा टेक्निकल है, आपको मालूम होना चाहिए कैपिटल गेन क्या है, आपको मालूम होना चाहिए दोहरा कराधान क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक भारत उस पर टैक्स क्यों नहीं ले रहा था, भारत को किस तरीके से इसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके किस वजह से इसके कारण प्रोत्साहित हो रहा था। जब तक आप इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझ सकेंगे इस संधि का की कितनी उपयोगिता है, इस संधि का क्या महत्व है। तो ये सारी जो बैकग्राउंड की चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं ये पहले मुझे जरा सा समझ लेने दीजिए, चीजें मुझे मालूम है लेकिन मैं थोड़ी सी और भी चाह रहा हूं कि विस्तार से इन चीजों को समझूं, बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर के इन चीजों को देखूं, और इन सबको बहुत अच्छे से देखने और समझने के बाद फिर मैं आपको इस टॉपिक पर कुछ बातें बताऊंगा जो आपकी मैं समझता हूं के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। मित्रों एक जो अंतिम खबर थी वो काला धन को लेकर थी। काला धन के बारे में आपने न्यूज पढ़ते समय कुछ वाक्य सुने होंगे कि काला धन को लेकर के सरकार अभी तक क्या क्या सरकार ने किया है, क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं। आपको मालूम है इसके बारे में हम लोग कई बार बातें भी कर चुके हैं कि अभी की जो सरकार है उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था देश से काले धन को समाप्त करना, और उसका सच पूछिए तो उसकी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। लोग बहुत आलोचना करते हैं कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो चीजों को शायद उतनी गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं, चीजों पर धीरे धीरे काफी प्रतिबंध लगना शुरू हुआ है। और सच पूछिए तो रियल एस्टेट आप देखिए कि पूरे के पूरे देश में रियल एस्टेट पर जो इतना डाउन चल रहा है, जमीनों की कीमतें घरों की कीमतें जो कम हो रही हैं, उसका उसके पीछे पर्पज यही है कि अब काला धन को स्थान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा काला धन रियल एस्टेट में लगा हुआ था, और जब रियल एस्टेट बिल आ गया है इसके बाद तो काला धन की गुंजाइश और कम हो गई है। मतलब ये कह लीजिए कि अब काला धन बेचारा मारा मारा थोड़ा सा फिरने लगा है, और कुछ दिनों के बाद हो सकता है अगर दिशा यही रही तो आगे मारा मारा ही वो फिरने लगे, इसलिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आपने जो न्यूज में जो कुछ वाक्य सुने हैं, जैसे आपने देखा कि कड़े दंडात्मक कानून बनाए गए हैं, कड़े दंड का प्रावधान किया गया, पहले उतने कड़े दंड नहीं थे कालाधन के मामले में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से कड़े कानून बनाए गए हैं, ये आपकी पकड़ में हो जाने चाहिए, इस पर आप तैयारी कीजिए, क्योंकि जो ब्लैक मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए कि उसी में था कि एसआईटी का गठन 2014 में किया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है 2014 में बनाई गई है, और इस टीम ने इसके बाद दो आंकड़े दिए हैं, ये आंकड़े आपको दिसंबर के एग्जाम तक काम आएंगे, क्योंकि ये सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, ऑथेंटिक आंकड़े हैं। दो आंकड़े कौन से दिए कि इस एसआई टीम ने 50,000 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ी, ये एक डेटा हो गया आपके लिए, 50,000 करोड़ रुपए के टैक्स की जो चोरी की जा रही थी वो पकड़ी गई। और काला धन होता क्या है, जिस धन पर टैक्स न दिया जाए वही काला धन होता है, तो 50,000 करोड़ रुपए की तो ये पकड़ी। और इसके बाद उन्होंने बताया कि 21,000 करोड़ रुपए की जो काली संपत्ति थी वो पता लगाया, ये भी वही है, 21,000 करोड़ रुपए संपत्ति के रूप में वो थी, प्रॉपर्टी के रूप में थी, यानी कि कुल 71,000 करोड़ रुपए का काम तो इसने किया है, इतने को रोका है। और मित्रों, ये जो घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो कानून बनते हैं और इस तरह की जो कार्यवाहियां होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल 71,000 करोड़ रुपए पर ही तो असर पड़ा है, नहीं, इनके प्रभाव बहुत व्यापक होते हैं। जब छापे पड़ते हैं, इस तरह की चीजें सामने आती हैं, तो वो चीजें रुकती हैं जो अन्यथा हो रही होती, उन पर एक तरह के तरीके का प्रतिबंध लगता है, उन पर रोक लगती है। तो 71,000 करोड़ रुपए का तो की तो जानकारी मिली है, इसके एवज में पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए और इस तरह के काले धन में कन्वर्ट होने से रुके होंगे। मित्रों, यहां जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं, विशेषतः ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो केवल इस आधार पर दिए हैं कि जो सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर कैसे होने चाहिए, उनके आंसर अगर आप लीपा पोती की भाषा में बात करेंगे कि सरकार बहुत कड़े कानून बना रही है, सरकार बकायदे निगरानी रख रही है, सरकार बकायदे वार्निंग दे रही है, लोगों को अब डर लगने लगा है, तो ये उत्तर नहीं हुआ। आपको सॉलिड स्टेप्स बताने पड़ेंगे कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो इस न्यूज के इस आइटम में जो 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं वो उनके स्टेप्स को बता रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से सॉलिड कंटेंट पर बेस्ड अपना उत्तर लिखते हैं, तब जाकर के आपके उत्तर में वो शाइनिंग आती है जो आपको नंबर दिला सके। पहले आप कंटेंट देते हैं और फिर उन कंटेंट की एनालिसिस देते हैं, अगर क्वेश्चंस में उनकी एनालिसिस की बात कही गई है तो, और तब जाकर के फिर आपका उत्तर एक सॉलिड आंसर बनता है, जिसे आप बेस्ड आंसर कह सकते हैं। तो मित्रों, आकाशवाणी के समाचार में आज बस इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर्स की आज मैं काफी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप सब नॉलेज सेंटर में पर जाकर देखेंगे ही। और मैं मित्रों ये भी बता दूं कि आपको करंट कंटेंट में भी पढ़ने को मिलेगा, तो प्लीज आप करंट कंटेंट को अभी डेली विजिट करें, और करंट कंटेंट में मैं बहुत ही सॉलिड चीजें और जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको वही चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। जानबूझ करके उसमें छोटी चीजें डाली जा रही हैं, और जानबूझ करके उसमें बहुत कम चीजें डाली जा रही हैं, ताकि एक चीज आप पढ़ें और आपके दिमाग में उसके बारे में क्लैरिटी बनी रहे, और दिन भर वो चीज आपके दिमाग में साफ तौर पर मौजूद रहे। ऐसा नहीं कि 5-7 चीजें डाल करके और उसको घिचपिच बना दिया गया है। तो उसके पीछे मित्रों एक मनोवैज्ञानिक सोच है एकेडमी की, और उसी के तहत आप देखेंगे कि करंट कंटेंट में हम थोड़ी ही चीजें प्रोवाइड करेंगे, उसको भीड़ वाली जगह नहीं बनाएंगे। तो प्लीज करंट कंटेंट को आप डेली विजिट करें ही, और मैं अपने डेली ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ दिनों तक इसकी याद भी दिलाता रहूंगा। मित्रों, दो जो क्लिपिंग्स हैं, दोनों क्लिपिंग्स दैनिक जागरण की हैं, मैं उन पर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक है क्यों जलते हैं जंगल फॉरेस्ट में, जैसे उत्तराखंड में के जंगलों में आग लगी है, ये भरत झुनझुन वाला जी का लेख है, हिंदी में है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसे देख लेंगे बड़े आराम से समझ लेंगे, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ठीक इसी तरह से दैनिक जागरण में राजीव सचान जो एसोसिएट एडिटर है बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका लेख है। दोहरे मापदंडों में इन्होंने बताया है कि जो अनुच्छेद 47 है जिस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है कि वो शराब पर मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकती है, इसी तरह से अनुच्छेद 48 है जिसमें गोवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों से अपेक्षा की गई है, तो इनकी इन्होंने चर्चा की है। और फिर अनुच्छेद 44 है जो समान नागरिक संहिता बनाने की जरूरत पर बल देता है, तो ये तीन अनुच्छेदों की उन्होंने बात की है और इसकी बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस की है कि इन तीनों को लेकर के हमारे देश में जो बहस चल रही है उन बहसों में किस तरीके से आपसी द्वंद है, वो बहसें बहुत स्पष्ट लाइन से नहीं चल रही हैं। जैसे शराबबंदी करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको समाज सुधारक कह दिया जाएगा, लेकिन गोवध को बंद करने वाला कोई होगा तो उसको सांप्रदायिक कह दिया जाएगा, उसको हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से जब समान नागरिक संहिता की बात होने लगेगी तो उसको फिर सेकुलरिज्म से जोड़ दिया जाएगा कि धर्म निरपेक्ष है कि नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि फिर एक ही जब अनुच्छेद के तहत ही चीजें बात हो रही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही कोई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तो उनको फिर इस तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण से क्यों देखा जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न उन्होंने उठाया है। और ये आर्टिकल दोनों मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, दोनों हिंदी में है इसीलिए मैं समय भी नहीं है कि मैं डिटेल्स में जाऊं। और ठीक इसी तरह से मित्रों कल के राष्ट्रीय सहारा में एक लेख छपा था खासकर भारत और नेपाल के वर्तमान के संबंधों को लेकर के, उस पर लेख है वो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत और नेपाल के संबंध एक बार फिर से थोड़े से खटास के दौर से गुजर रहे हैं, जब नेपाल ने अपने भारत स्थित राजदूत को वापस बुला लिया और उनके राष्ट्रपति भारत के भी यात्रा भी करने वाली थी जो कैंसिल कर दी गई, तो फिर से एक खटास जैसी स्थिति दिख रही है। जबकि भारत और नेपाल के संबंध बहुत मायने रखते हैं, भारत की दृष्टि से भी नेपाल बहुत महत्व रखता है और नेपाल के लिए भारत भी महत्व रखता है, और इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विस में अक्सर जो एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होते हैं उसके अंतर्गत पूछे भी जाते हैं क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, तो उस लिहाज से वो क्लिपिंग्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो मित्रों न्यूज़पेपर से बस इतना ही, अब मैं आता हूं अंतिम ईमेल के चरण पर। बहुत बहुत धन्यवाद ईमेल लिखने वाले अपने सभी प्यारे साथियों को और बहुत बहुत आभार भी उनके प्रति। इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अमित सिंह जो देहरादून उत्तराखंड से हैं, प्राणजीत नाथ जो तेजपुर असम से हैं, प्रशांत कुमार आप पटना से हैं, अश्विनी द्विवेदी आप सतना मध्य प्रदेश से हैं, ओपी जाट आप अजमेर से हैं, रजिया इलाहाबाद से हैं, अजय दिल्ली से हैं, मोहित वर्मा और लव कुमार इंदौर से हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर ढेर सारी हम लोग बातें करेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।